Hare Krishna, Srimad Bhagavatam class on 3rd canto, 9th chapter, shloka number 12, given on 7th October 2015 in Faridabad temple by myself, Prashant Mukunda Das.
Yeah. श्री राधा गोविंद भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भगवान की जय। श्री श्री पंचतत्व गौर निताय की जय। पतित पावन श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि कृष्ण भक्तवृंद की जय। व्रत श्री भागवतम की जय। निताय निताय गौर प्रेमान कृष्ण। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आज के श्लोक संख्या है श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंध नौवां अध्याय बारहवां श्लोक। न अति प्रसिद्धते तथा उपचित उपचारो। अराधित सुरगुणे हृदय बद्ध कामे। यत् सर्वभूत दयाया असत् अल्भ्य एको। नाना जनेषु अवित सुहृत् अन्तरात्मा। न अति प्रसिद्धते तथा उपचित उपचारे। अराधितो सुरगुण हृदय बद्ध कामे। यत् सर्वभूत दयाया सत् अल्भ्य एको। नाना जनेषु अवित सुहृत् अन्तरात्मा। नाति प्रसिद्धते तथा उपचित उपचारे। अराधित सर्गुण हृदय बद्ध कामे। यत् सर्वभूत दयाय सत् अल्भ्य एको। नाना जनेषु अवहित सुदन्तरात्मा। नाति प्रसिद्धते तथा उपचित उपचारे। माता जी पढ़ेंगे सब साथ में दोहरा सकते हैं। हे प्रभु, आप उन देवताओं की पूजा से बहुत अधिक तुष्ट नहीं होते जो आपकी पूजा अत्यंत ठाक पाठ से तथा विविध साज सामग्री के साथ करते तो हैं।
किंतु भौतिक लालसाओं से पूर्ण होते हैं। आप हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में अपनी अहत की कृपा दर्शाने के लिए स्थित रहते हैं। आप नित्य शुभ चिंतक हैं, किंतु आप अभक्तों के लिए अनुपलब्ध हैं। इसका तात्पर्य बहुत बड़ा है, तो साथ साथ में तात्पर्य पढ़ेंगे और उसकी चर्चा भी करेंगे। उससे पहले मामला चरण लेंगे। ओम ज्ञान तिरंधस ज्ञानंजन शलाकय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदाभयं ददाति सत्कान्तिकम्। वन्देहं श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवाश्च श्रीरूपं साकृजातं सहगणगुणान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णापादान् सर्वललिता श्रीकृष्णाकान्तिकाश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। पापकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणामामि हरि प्रिये। कल्पतरूपश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्ण। इसका तात्पर्य लिखा है श्री प्रभुपाद जी के द्वारा और बहुत बड़ा तात्पर्य है। प्रभुपाद जी जब किसी भी श्लोक का बड़ा तात्पर्य दे रहे हैं, इसका मतलब श्लोक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस श्लोक को हम पढ़ेंगे। इसका तात्पर्य है, प्रभुपाद लिख रहे हैं, भौतिक मामलों के लिए नियुक्त प्रशासक देवलोक के देवता भी भगवान के भक्त हैं, किंतु इसी के साथ उनमें भौतिक ऐश्वर्य तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छाएं होती हैं। जो हमारे 14 लोक हैं और पृथ्वी लोक के ऊपर 6 और नीचे 7, इस प्रकार से जो 14 लोक हैं, 14 भुवन, इसके अंदर देवी देवता जो अनेक लोकों में विराजमान हैं, ऊपर के पितृ लोक, स्वर्ग लोक, तप लोक, महालोक, जन लोक, ब्रह्म लोक, इन सारे लोकों में जो देवी देवता हैं वो भी इंद्रिय तृप्ति के वशभूत होते हैं, इच्छाओं के कारण, इसलिए वो वैकुंठ धाम में प्रवेश नहीं करते। पूरे ब्रह्मांड को दो भागों में बांटा जाता है, एक है वैकुंठ जगत, एक है कुंठा जगत। तो वैकुंठा मतलब जहाँ कोई कुंठा नहीं, एंजाइटी लेस, लेकिन यह है फुल ऑफ एंजाइटी, परेशानियों से भरा हुआ है। पदम पदम या विपदम, हर कदम कदम पे यहाँ पे विपदा ही है, टेंशन एंजाइटी है। तो उसमें जो देवी देवता यहाँ रहते हैं, इस अप्रकट, इस जो प्रकट जगत है इसके अंदर, वो सारे के सारे इच्छाओं से वशीभूत रहते हैं। लेकिन भगवान यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इतने दयालु हैं कि वे उन्हें उनकी इच्छा से भी अधिक समस्त प्रकार का भौतिक सुख प्रदान करते हैं, किंतु वे उनसे तुष्ट नहीं रहते, क्योंकि वे शुद्ध भक्त नहीं है। भगवान ये नहीं चाहते कि उनके असंख्य पुत्रों में कोई भी 3 तापों वाले भौतिक जगत में रहकर जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा रोग के भौतिक कष्टों को लगातार भोगता रहे। स्वर्गलोक के देवता तथा इस लोक के अनेक भक्त भी भौतिक जगत में भगवत भक्त बने रहकर भौतिक सुख का लाभ उठाना चाहते हैं। वहां वे जीवन के निम्न पद पर आ गिरने का जोखिम उठाकर ऐसा करते हैं, जिससे भगवान उनसे असंतुष्ट रहते हैं। तो वो बार बार इसी जन्म मृत्यु तथा संसार में आते हैं, जैसे बताया गया है शिने पुण्यम मृत्यु लोकम मिशन्ति, कुछ पुण्य अर्जित करने के बाद ऊपर के लोग स्वर्ग लोक आदि लोकों में जाते हैं, और जैसे ही उनके पुण्य कर्म समाप्त होते हैं वो वापस पृथ्वी लोक पर आते हैं, जहां उन्हें इसी जन्म मृत्यु बुढ़ापा रोग ऊपर के लोगों में भी है, लेकिन वहाँ ड्यूरेशन थोड़ा लंबा है। वहां पर किसी का जन्म होने के बाद 1000 साल की आयु हो सकती है, लेकिन इस जगत में मैक्सिमम आयु बताई गई है कलयुग में 100 वर्ष, इससे ज्यादा जीवित नहीं रह सकता व्यक्ति। और जैसे कि बताया गया रोग, तो एक बताए थे पहले, लोग आजकल बड़ा खुश होते हैं, इतने सारे हॉस्पिटल खुल रहे हैं, बड़ी तरक्की हो रही है ना, हर जगह हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल, उसकी भी एक और ब्रांच खुल गई, डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन ये नहीं सोचते कि प्रगतिशील समाज में अस्पताल खुलने का मतलब अनगिनत रोगों की संख्या बढ़ना। रोग भी इतने प्रकार के हैं, एक का इलाज ढूंढते हैं तो दूसरा रोग निकल आता है, तो कोई ये नहीं कह सकता हमने रोग के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है या मृत्यु। प्रभुपाद जी कहते हैं 100% रिजल्ट अगर किसी चीज का है तो वो क्या है, मृत्यु। ये 100% हमेशा रहने वाला है, ये नहीं होगा कि इसमें से कुछ कम हो गया। 99% मृत्यु चल रही है आजकल, 1% लोग जो बहुत अच्छे भक्त हैं या फिर वो जो बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं वो बच जाते हैं, ऐसा नहीं। 100% रिजल्ट तब के सब मृत्यु के वशीभूत हो जाएंगे, मर जाएंगे संसार में। तो इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं हमको कि इस जन्म मृत्यु बुढ़ापा रोग से बचने के लिए एकमात्र तरीका क्या, भक्ति मैं जीवन को अपनाना, अपने तीन तापों से बचने के लिए। और शुद्ध भक्तों को ना तो किसी भौतिक भोग की आकांक्षा रहती है, ना ही वे उससे विमुख रहते हैं, वे भगवान की इच्छाओं से अपनी इच्छाओं को जोड़ देते हैं और अपने लिए वे कुछ भी नहीं करते। इसका उत्तम उदाहरण अर्जुन है। अर्जुन अपनी भावनाओं से पारिवारिक स्नेह वश युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु श्रीमद् भगवद गीता सुनने के बाद उसने भगवान की इच्छा के लिए लड़ना स्वीकार किया। अतः भगवान शुद्ध भक्तों से अत्यधिक संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि वे अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कर्म न करके एकमात्र भगवान की इच्छा के अनुसार कर्म करते हैं। परमात्मा रूप में वे हरेक के हृदय में सदैव स्थित रहते हैं और हरेक की इच्छा अच्छी सलाह से लाभ उठाने का अवसर प्रदान करते हैं। अतः हर व्यक्ति को चाहिए कि इस अवसर का लाभ उठाते हुए पूर्ण मनोयोग से केवल उन्हीं की दिव्य प्रेमा भक्ति करे। किंतु अभक्तगण ना तो देवताओं जैसे होते हैं ना शुद्ध भक्तों जैसे, अपितु वो भगवान के साथ दिव्य संबंध बनाने से विमुख रहते हैं। उन्होंने भगवान के प्रति विद्रोह किया है, इसलिए उन्हें निरंतर अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो इसके अंदर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भक्ति में आगे बढ़ने का सिर्फ भक्ति ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा भगवान को जाना जा सकता है। जिस प्रकार से भगवद गीता में 7वें अध्याय में लिखा गया, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को, भक्त्या माम विजानति यावन्यस्यस्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतः ज्ञात्वा वशे तदनन्तरम्। भगवान कहते हैं कि भक्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा मुझे जाना जा सकता है, और उसी के द्वारा कोई व्यक्ति अगर तत्व से कृष्ण को जान लेता है, जैसे लोग बोलते हैं कि आप लोग राम की भक्ति नहीं करते, आप लोग तो कृष्ण की भक्ति करते हैं, अच्छा अच्छा आप लोग तो कृष्ण वाले हैं ना, आप लोग रामचंद्र जी को मानते नहीं है, अच्छा आप लोग तो वराह की तो पूजा नहीं करते हैं, खाली नरसिंह और कृष्ण रखे हुए हैं आपने तो मंदिर में, इस तरह से लोग बोलते हैं, या फिर आप तो परशुराम या वामन अवतार इनकी पूजा नहीं करते हैं, इनका कोई फेस्टिवल नहीं मनाते हैं आप, तो इस तरह से वो जानते नहीं है कि तत्व क्या है। कृष्ण तत्व ही तो है सबके अंदर, 24 प्रकार के अवतार भागवतम में वर्णन है भगवान ने लिए, तो सभी तो तत्व कृष्ण है। तो वो व्यक्ति जब तत्व से कृष्ण को जानता है तो फिर भगवान कहते हैं ततो माम तत्त्वतः ज्ञात्वा, तत्व से जो मुझको जान जाएगा वशते तत् अंतर्गम, वो फिर मेरे वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति खाली ये सोचता है कि अरे हम तो राम की उपासना नहीं करते हैं, राम तो नीचे हैं या फिर वो नीचे हैं, कृष्ण सबसे सर्वोपरि हैं, लेकिन उन्हें समझना चाहिए तत्व रूप में कृष्ण ही सब में विराजमान है, तब ये सब व्यक्ति समझेगा, तब उसे द्वेष रहित होगा, वरना वो द्वेष करता रहेगा, ये वाले भगवान की पूजा नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। और यहाँ तक कि अन्य देवी देवताओं को भी हमें क्या नहीं करना चाहिए, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। देखा है अनेक आचार्यगण जब परिक्रमा आदि में जाते हैं, चाहे मायापुर हो या फिर वृंदावन कार्तिक यात्रा हो, और जैसे भी शिव जी का मंदिर है या दुर्गा जी का मंदिर है, तो वहां पर प्रणाम करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए, और क्या बोलना चाहिए, वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्यते वच, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वो भी वैष्णव है, वो भी वैष्णव है, वैष्णव नाम यथा शंभु। तो उनकी क्रिटिसिज्म तो बहुत दूर की बात है, वो तो जो करता है वो तो फिर गया उसकी भक्ति में, वो बहुत अपराध ही हो जाएगा, बहुत ज्यादा अपराध करेगा। प्रभुपाद जी बोलते थे प्रीचिंग, अगर प्रचार भी आप करते हैं तो कभी नेगेटिव प्रीचिंग नहीं होनी चाहिए, देवी देवताओं के अगेंस्ट प्रीचिंग नहीं, उनकी स्थिति का हमको वर्णन करना चाहिए कि ये भगवान के दास है, इकला प्रभु कृष्ण आर सब व्रत, सब भगवान के दास है। लेकिन ये ना हो कि बोलने लग जा रहे तुम तो आते ही नहीं, शिव जी के तुम तो गए नरक जाओगे तुम तो, अरे तुम्हें तो पता ही नहीं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ये गलत है इस तरह से प्रचार करना। तो प्रभुपाद जी का मैं एक प्रवचन सुन रहा था, प्रभुपाद जी ने बोला प्रीचिंग इस प्रकार से होनी चाहिए जहाँ कृष्ण को स्थापित करें, कृष्ण की जो स्थिति है मतलब पूर्ण भगवान जो ईश्वरम परम कृष्ण, परम भगवान कृष्ण है और बाकी सब उनके सर्वेंट है, दास है, ये स्थिति आपको स्थापित करने प्रचार में। ये नहीं कहना कि वो गलत है, सिर्फ कृष्ण सही है, इससे क्या है लोग जुड़ते नहीं है भगवान की भक्ति में, वो सोचते हैं हमारा तो 20 साल से दुर्गा जी की उपासना में था या फिर शिव जी की में था, ये तो बोल रहे हैं वो बेकार है, मतलब मेरा 20 साल बेकार हो गए। तो उनको बताना चाहिए कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी से सीढ़ी भक्ति में प्रगति होती है। पहले कोई व्यक्ति सूर्य की उपासना कर रहा है, उसके बाद फिर सूर्य की उपासना करने के बाद उसकी प्रगति होती है, तो फिर व्यक्ति गणेश जी की उपासना करता है, फिर गणेश जी की उपासना करने के बाद उसकी प्रगति होती है, तो गणेश जी अपनी मदर के पास भेज देते हैं मेरी माँ को पूजो, तो फिर वो दुर्गा जी या पार्वती की उपासना करता है, फिर उसके बाद फिर और प्रगति होती है तो वो कहते हैं मेरे पति की उपासना करो, तो शिव जी के पास चला जाता है, शिव जी की उपासना करता है, फिर शिव जी के पास जब जाता है कहते हैं मेरे ईश्वर की पूजा करो, तो फिर वो कृष्ण के पास पहुंचता है। तो अगर कोई अगर गणेश की उपासना कर रहा है दुर्गा की तो गलत नहीं है, वो सीढ़ी पे है। जैसे कोई व्यक्ति 10वीं क्लास में पढ़ रहा है और कोई बीएससी में पढ़ रहा है या पोस्ट ग्रेजुएशन में है, एमबीए एमसीए कर रहा है, उस व्यक्ति को वो बोले अरे तुम तो 10वीं में हो, तुम तो गलत हो, तो ये चीज तो गलत है। 10वीं में जो पढ़ रहा है वो एक दिन ग्रेजुएशन भी 12th भी करेगा, ग्रेजुएशन भी करेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन भी करेगा। आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं इसका मतलब ये नहीं आप थर्ड क्लास वाले को, इधर कौन सी क्लास है थर्ड, तो जी गलत है, सबकी सीढ़ी है, उसको बोलना चाहिए प्यार दो अभी तीसरी में हो मेहनत करो, फिर 10वीं में आओ, फिर 12वीं पढ़ो, फिर ग्रेजुएशन, फिर हमारी तरफ पोस्ट ग्रेजुएशन। तो इस तरह से हम उसको प्रचार करना चाहिए प्रेम पूर्वक, ये प्रभुपाद जी ने बताया हमको। लेकिन वैकुंठ जगत में अगर हमारा मन शांत नहीं है तो हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे। देखिए भक्ति करने के लिए अब बताते हैं भजताम प्रीति पूर्वकम, भगवान से प्रीति पूर्वक भजन करना है, और प्रीति पूर्वक तभी होगा जब इस मन के अंदर बैलेंस शांत हो जाएगा। इतना अशांत है क्योंकि हम हमेशा कोई भी कार्य करने से पहले उसके टारगेट उसके रिजल्ट से आसक्त होते हैं, मेरे को प्रभु जी ने सेवा दिया है ऐसा कार्य करना है, अब उस कार्य को करने के बाद में मुझे कितना एप्रिसिएशन मिलेगा, बस इसकी मेहनत करनी है। तो इसीलिए जो लोग अच्छे भक्त होते हैं वो अपने गुरु या फिर सीनियर डिवोटीज के ना रहते हुए भी उतनी श्रद्धा पूर्वक सेवा करते हैं, जो कि अच्छे भक्त नहीं होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि जब सीनियर डिवोटी या गुरु सामने है तब तो फिर बहुत अच्छी भक्ति करते हैं, बहुत अच्छा सेवा करते हैं, लेकिन जैसे ही वो आंखों से उझल होते हैं बस फिर रिलैक्स हो जाते हैं। अगर आप कोई टेंशन नहीं है, जैसे क्लास में होता है टीचर है तो बच्चे पढ़ते हैं, टीचर नहीं है तो कोई बच्चा पढ़ता ही नहीं है, तो ऐसी वो भक्ति नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रभुपाद ने बोला, सबने पूछा कि प्रभुपाद आप इतना सब कुछ कैसे कर पाए, आप अकेले आए अमेरिका में और आपने इतना सब कुछ कैसे कर लिया, तो प्रभुपाद जी ने कहा किसने कहा मैं अकेला था, माई गुरु वॉज ऑलवेज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी, मेरे गुरुदेव सदा मेरे साथ खड़े रहते थे। ये जो लाइन है ना इतनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम सिर्फ फिजिकल फॉर्म में मानते हैं ये गुरु जी है या फिर नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ये चीज मान ले कि गुरु या हमारे सीनियर हमेशा हम लोग देख रहे हैं, तो व्यक्ति कभी भी अपने पास से क्या होगा डाइवर्ट नहीं होता, डिविएट नहीं होता, वो हमेशा उतनी श्रद्धा पूर्वक भक्ति करेगा जितनी वो उनके सामने करता है। लेकिन मन शांत नहीं रहता तो बताते हैं इसलिए कि अभिलाषाएं हमारी समाप्त नहीं होती जीवन में। अर्जुन जो उन्होंने भगवत गीता के अंदर इतना बड़ा ज्ञान प्राप्त किया भगवान से, वो भी जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई तो रोने लग गए, तो फिर भगवान ने कहा इतना सब कुछ दिया वेस्ट चला गया, ये भी रो रहा है, विलाप कर रहा है क्योंकि इसके पुत्र की मृत्यु हो गई है, तो अभी तुम उसको शरीर मान रहे हो, ये नहीं मान रहे कि आत्मा तो शाश्वत है, इस तरह से भगवान ने बोला। और फिर उस ज्ञान से, क्योंकि ज्ञान था तो जल्दी रिवाइव कर पाए, इसीलिए जो श्राद्ध कर्म होते हैं या फिर मृत्यु होने के बाद किसी के घर में कुछ टाइम पीरियड दिया जाता है 11 दिन 21 दिन, तो इसलिए ब्राह्मणास का सबसे कम था क्योंकि वो ज्ञान के कारण, क्योंकि ज्ञान था भगवद्गीता का, शास्त्रों का, गरुड़ पुराण का, उसके कारण वो समझ पाते थे कि आत्मा आत्मा तो शाश्वत है, इसलिए वो टेंशन नहीं लेते, वो 11 दिन में वापस अपनी सेवाओं में रिवाइव हो पाते हैं। जो लोग क्षत्रिय है उनको 21 दिन दिए गए कि आप 21 दिन में रिवाइव कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास ज्ञान उससे कम है। वैश्यों के लिए 30 दिन और शूद्रों के लिए तो कोई है नहीं, क्योंकि वो शरीर के भेद और आत्मा के भेद को जानते नहीं, इसलिए वो रोते रहते हैं। इसलिए उनको इस तरह से बोला गया कि आपको, प्रभुपाद ने कहा सबको ब्राह्मण बनना है। ब्राह्मण बनने का मतलब शारीरिक रूप या कास्ट से नहीं, इसलिए ताकि सब के सब आत्मा तत्व से समझ पाए। इसीलिए भगवत गीता पढ़ी जाती है जब कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है, या फिर श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान पंच तत्व गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो इसमें यही बताया गया है कि व्यक्ति जो है उसको रिजल्ट ओरिएंटेड होकर भक्ति नहीं करनी चाहिए। तो अर्जुन जो थे वो भी इस प्रकार से वार्तालाप करने लगे। हाँ, क्या बोल रहे थे अर्जुन कि मैं कैसे अपने परिवार के लोगों को मार सकता हूँ। इस तरह से जब उन्होंने भगवद गीता के ज्ञान से पहले इस तरह का वर्णन किया, भगवद गीता के पहले अध्याय में और दूसरे में भी शुरुआत से 10 श्लोकों तक वो वर्णन करते रहे, मैं तो घबरा रहा हूँ, मेरे हाथ से धनुष गिर रहा है, मैं कैसे वार करूँ, कैसे तीर चलाऊ। तो फिर भगवान ने क्या बोला, भगवान उनको कहते हैं आप भगवत गीता में, भगवान ने उनको बोला, श्री भगवान उवाच अशोच्यन अनुशोच्य त्वं प्रत्यवादं च भाषसे गत असोन अगत सोन चानां शोचति पंडितः। भगवान ने कहा तुम पंडित रूप में बातें कर रहे हो, तो ब्राह्मण रूप में नहीं, लोग कन्फ्यूज होते हैं, पंडित रूप में तुम बातें कर रहे हो। पंडित आदि का मतलब जो कि समझ नहीं पाए, स्थिति को आत्मा के तत्व को नहीं समझ पा रहे हैं, तुम उस तरह से बातें कर रहे हो, ज्ञानी बनकर अरे मेरा क्या अच्छा क्या बुरा इन सब के भेद से ऊपर आ जाओ। अब जो तुम करने जा रहे हो वो किसके लिए कर रहे हो, मेरे लिए कर रहे हो। तो इस चीज को हमें समझना चाहिए, हम जीवन में कोई भी कार्य कर रहे हैं वो किसकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए। यहाँ तक कि नाम जप, अभी सेमिनार हो रहा था पीछे द्वारका में, भक्ति व्रत लालक महाराज आए थे, तो उसमें लोगों से एक प्रश्न पूछा गया था कि आप किसके लिए जप करते हैं, तो सबके सब बोले कि कोई बोला शांति के लिए, कोई बोला तनाद पिशुन चिन्ह भक्त बनने के लिए, विनम्र बनने के लिए, और ये सब रॉन्ग है। और ये भगवान की सबसे बड़ी सेवा है, 99% स्पिरिचुअल लाइफ भगवान के भजन के ऊपर अटकी हुई है, चैंटिंग के ऊपर, जप के ऊपर। तो कोई व्यक्ति ये समझ के करता है कि मैं ये सेवा कर रहा हूँ इससे कृष्ण प्रसन्न होंगे, तो बस तब वो जाकर उसकी भक्ति शुरू हो रही है। जब तक वो यही नहीं समझ रहा मैं तो इसलिए कर रहा हूँ मेरे अनर्थ कट जाए, मैं तो इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा मन शांत हो जाए, मैं इसलिए अपने लिए ही कर रहा हूँ, तो अभी उसकी मतलब जब भक्ति की स्टार्टिंग नहीं हुई है उस टाइम। वो जब ये समझे कि ये तो कृष्ण की सबसे बड़ी सेवा है, मतलब चैंटिंग तो सोचते हैं ये अलग चीज है, और सेवा मतलब होता है झाड़ू लगाना मंदिर में, प्रचार करना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करना, प्रसादम कुकिंग करना, डीटी वर्शिपिंग करना, ये सारी सेवाएं बाद में। सबसे बड़ी सेवा भगवान की जो भगवान को प्रसन्न करती है वो भगवान के नामों का जप करना। क्या बोलते रहना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन हम परेशान रहते हैं, उद्विग्न रहता है हमारा मन शांत नहीं रहता, क्योंकि कोई छोटी सी परेशानी आती है तो उसको लेकर हम सोचते रहते हैं। जिस तरह से अर्जुन भी सोचे जा रहा है, भगवान ने कहा सोचो मत, जो मैं कह रहा हूँ बस वो करो। भगवान ने हमको बोल दिया क्या, भजन करो, चैंटिंग करो, मंगल आरती आओ, हाउस प्रोग्राम घर में अपने प्रोग्राम करो, मंगल आरती मॉर्निंग प्रोग्राम करो, चाहे घर में हो चाहे मंदिर में हो, तो शास्त्र पढ़ो, ये सारी चीजें भगवान ने प्रभुपाद जी के द्वारा हमको बताए, तो हमको इस चीजों का पालन करना चाहिए। लेकिन ज्यादा सोचने से क्या होता है, किसी भी एक पॉइंट को हमारा मन विचलित हो जाता है। जैसे एक बार एक साधु थे और उनका एक शिष्य था, वो एक नदी और गांव से निकल रहे थे, तो वहां नदी पड़ती थी, उस नदी के अंदर जल बहुत अच्छा स्वच्छ जल था, तो उन्होंने बोला कि जाओ और जाकर मेरे लिए एक पात्र भरकर जल ले आओ, प्यास लगी है मुझे। तो शिष्य दौड़कर गया, मेरे गुरुदेव की सेवा है, और जब वो वहां पहुंचा तो देखा कि उसमें से एक बैलगाड़ी निकल रही है नदी के अंदर से, नदी में जल ज्यादा नहीं होता, गांव से जो निकलती है उसमें कम जल था, बैलगाड़ी पार जा रही है, बैलगाड़ी के जाने से मिट्टी ऊपर आ गई है और पूरा जल ऐसा हो गया है, पीला पीला वाटर क्या बोलते हैं, पीले रंग का पानी हो गया, तो मडी वाटर, तो पीले रंग का पानी है, तो सोच रहे अरे ये तो बड़ा गंदा है, मैं अपने गुरुदेव को गंदा पानी पिलाऊंगा। तो गया वापिस आ गया शिष्य, जब वापिस आया तो आकर बोलता है गुरुदेव वहां तो बहुत गंदा पानी है, कह रहे ठीक है कोई बात नहीं अब जाओ अब ले आओ। तो वो वापिस गया, देखा कि अभी भी गंदा पानी है, फिर वापिस आया, बोला गुरुदेव गंदा पानी है, कह रहे कोई बात नहीं फिर से जाओ अभी ले आओ। वो फिर गया, फिर देखा वहां पर गंदा पानी है,
गुरुदेव बोले मैं कह रहा हूँ ना वहां जाके बैठो और लेके आ जाओ, बस तुम जाओ। तो वो तीसरी बार गया तो देखा पानी स्वच्छ हो गया और फिर उन्होंने पात्र भरा लाके दिया। तो बोला गुरुदेव आपने जो है ये मेरे को बोला वहीं से पानी लेके आओ और पानी पहले गंदा था फिर साफ कैसे हो गया। तो उनके गुरुदेव ने वहां शिक्षा दी, उन्होंने कहा कि किसी भी प्रॉब्लम को अगर आप स्थिर रूप से चलने दोगे अपने जीवन में, मतलब ये है कि कोई प्रॉब्लम आई और ये भजन करना है, तो सबसे पहले कोई व्यक्ति त्यागता है तो क्या त्यागता है? भजन। चैंटिंग शाम को कर लूंगा, पहले ये सॉल्व कर लेता हूँ प्रॉब्लम। रीडिंग कोई बात नहीं, आज नहीं हो पाई ना, आज एक्चुअली मेरे पास ये टेम्पल का प्रॉब्लम था, ये मेटीरियल प्रॉब्लम था। तो जो व्यक्ति प्रॉब्लम को लेकर ये छोड़ देगा वो व्यक्ति समझ नहीं पा रहा कि जो प्रॉब्लम्स हैं ये आएंगी और जाएंगी, आएंगी और जाएंगी। ये संसार है दुखालय, ये ऐसा दिन कोई नहीं हो सकता जो व्यक्ति दुखों के रहित हो जाए, सुखालय संसार हो जाए। एक बार भक्ति रसामृत, भक्ति रसामृत महाराज ब्रह्मचारी दीक्षा दे रहे थे, तो एक ब्रह्मचारी ने प्रश्न पूछा, मैं लेक्चर सुन रहा था एक बार, तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि आप हमें ऐसा कोई ट्रिक बताइए, अब तो हमें 15 साल हो गए सेवा करते हुए, अब हम फुल टाइम ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं और बन रहे हैं, तो आप हमें बताइए ऐसा कोई ट्रिक जिससे हम स्मूथली अपनी भक्ति कर सकें, मतलब जप हो जाए सुबह सुबह, हवा चल रही ठंडी, खुशबू आ रही है अगरबत्ती की, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हो रहा है, फिर चैंटिंग के बाद रीडिंग का टाइम मिल रहा है, फिर उसका हियरिंग लेक्चर सुन रहे हैं, उसके बाद फिर जा रहे हैं, फिर पूरे दिन कोई प्रॉब्लम नहीं मिल रही है, फिर उसका रात को प्रसाद भी टाइम पे मिल रहा है, फिर सो भी टाइम पे रहे, फिर सुबह भी उठ रहे टाइम, ऐसा स्मूथली कुछ हो जाए। तो उन्होंने कहा योर क्वेश्चन इज रॉन्ग। तो महाराज का सुन रहा था, बोला योर क्वेश्चन इज रॉन्ग। अगर कोई व्यक्ति ये पूछ रहा है कि संसार में मुश्किलें समाप्त हो जाएं, तो उसका प्रश्न ही गलत है। तो उन्होंने बोला कि सन्यासी होने के बाद भी हाथ पर डंडा लेकर इस संसार का वैराग्य करने के बाद भी प्रॉब्लम समाप्त नहीं होती है। करना क्या है कि जिस प्रकार से आंधी चलती है जब बाहर, तो व्यक्ति क्या करता है अपने घर की खिड़कियां बंद कर लेता है, आंधी इंपैक्ट नहीं करती, उसको असर नहीं डालती है। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति आपको आपके लिए कुछ नेगेटिव बोल रहा है या आपकी कोई बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है लाइफ में, आप नहीं कर पा रहे हैं उसको बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो उस समय ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि आप अंतर्मुखी हो जाए आत्मा तत्व में, कि आई एम द सोल, आई एम नॉट द बॉडी, मैं शरीर नहीं हूं मैं आत्मा हूं, और फिर अंदर रिलीज करें कि आत्मा का स्वरूप क्या है। जीवेरे स्वरूप हुए नित्य कृष्ण दास, मैं तो दास हूं, दास के साथ तो प्रॉब्लम आनी आनी, दास को तो हमेशा गाली खानी पड़ती, कोई बात नहीं, खिड़की बंद कर लिया वो इंपैक्ट करना बंद, और अंदर अंदर आत्मा में क्या चल रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे एक बार एक प्रोफेसर ने अपने क्लास में भक्तों अपने स्टूडेंट्स को बोला कि इधर आओ, सारे स्टूडेंट बड़ी प्रॉब्लम में रहते थे, हमेशा प्रॉब्लम डिस्कस करते थे, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम ऐसा प्रॉब्लम वैसा प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट्स को बुलाया और कहा आज मैं तुमको प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाऊंगा, तो सब समझ गए कुछ सॉल्यूशन देने वाला है ना। तो इसी तरह से हम भी सोचते हैं कुछ सॉल्यूशन मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा, तो क्या सॉल्यूशन है? अरे इन्होंने तो बोला जब करो, ये कोई सॉल्यूशन हुआ? इन्होंने कहा रीडिंग करो, अरे रीडिंग तो तब करे जब मन शांत हो, प्रॉब्लम ही नहीं खत्म होती जीवन में, तो कब हम भक्ति करें, कब गीता पढ़े? प्रभु जी जहां पे लगाया था पहला पन्ना 3-4 श्लोक पढ़े, उसके बाद इतनी प्रॉब्लम आई ना एक महीने से, बस क्या बताऊं आपको, 5वें श्लोक पर पहुंच ही नहीं पाया मैं, या फिर भागवतम का 1st चैप्टर पढ़ा हुआ है बस, 2nd चैप्टर तो वेट कर रहा हूँ कौन सा दिन आया शुरू करूंगा, तो प्रॉब्लम्स। तो उन्होंने कहा कि एक जल का भरा हुआ पात्र, ग्लास वाटर से भरा हुआ, उनको कहा ये पकड़ो और ऐसे हाथ खड़ा करके पकड़े रहो, तो वो ऐसे करके पकड़े रहा स्टूडेंट उनका। तो उन्होंने कहा कि ठीक है अब इसे खड़े रहो पकड़कर 15 से 20 मिनट तक, और फिर एक व्यक्ति को बुलाया, बोले तुम पकड़ो और इसको नीचे रख दो, और तीसरे को बुलाया इसको पकड़ो और 5 मिनट बाद नीचे रख दो। तो तीनों ने अलग अलग समय पर रखा, फिर तीनों का रियलाइजेशन, तीनों से पूछा गया कि कैसा लगा आपको, पहले वाले से पूछा जिसने 1 मिनट में रखा, आप बोले कुछ प्रॉब्लम हुआ, कह रहे नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। दूसरे वाले से पूछा जिसने 10 मिनट में रखा, कह रहे आपको प्रॉब्लम हुआ, कह रहे नहीं मुझे भी कोई ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बस दर्द हो रहा है। जिसने 20 से 25 मिनट पकड़ा था ऐसे करके ग्लास, उसको बोला आपको क्या प्रॉब्लम हुआ, कह रहा मेरा तो हाथ ऐसा लग रहा है बस सुन्न हो गया, चल ही नहीं रहा बिल्कुल, ऐसे ऐसे हाथ ही उठना बंद हो गया, पैरालाइज हो गया ऐसा लग रहा है। कहा अच्छा ये बताओ तीनों ने जल पात्र जो पकड़ा था उसमें जल की संख्या कम या ज्यादा हुई, अब जितना जल भरा था उससे कम या ज्यादा हुई, जिसने 1 मिनट पकड़ा, जिसने 10 मिनट पकड़ा या जिसने 25 मिनट पकड़ा? अरे नहीं जल की संख्या तो उतनी की उतनी रही। इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि आपकी जो प्रॉब्लम्स लाइफ में है
वो एज इट इज रहने वाली है। आपके सोचने से, अगर आप उसे 24 घंटे सोचेंगे तब भी प्रॉब्लम एज इट इज है, अगर उसे 1 मिनट सोचेंगे प्रॉब्लम है, ठीक है मैं अभी जब करता हूँ बाद में देखूंगा, तब भी वो प्रॉब्लम उतनी ही रहने वाली है। ये नहीं प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी, ज्यादा देर लगाएंगे सोचेंगे या फिर कम हो जाएगी वो। इसलिए हमें भजन आदि चीजों में ज्यादा ध्यान लगाना है बजाय इसके कि हम प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते रहे, है ना। इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कार्य करते हैं वो लोग भक्त बन जाते हैं, और अभक्तगण कभी भी क्या होते हैं, शुद्ध नहीं होते, क्योंकि वो हर एक काम को अपने लिए करते हैं। अपने लिए करेंगे तो पहले प्रायोरिटी समझेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसके बाद भजन, उसके बाद रीडिंग, उसके बाद प्रवचन। तो इसलिए पहली प्रायोरिटी लाइफ की होनी चाहिए क्या, भगवान के नाम जप, भगवान की आरती, भगवान के शास्त्र, ये कोई व्यक्ति कर ले उसके बाद उसको प्रॉब्लम सोचना चाहिए। वैसे प्रभुपाद जी कहते हैं जिसने जप कर लिया ध्यान पूर्वक उसकी प्रॉब्लम्स तो वैसे ही समाप्त हो जाती है। हमारी एक्चुअली प्रॉब्लम ही वहीं से शुरू होती है कि जब भी ध्यान पूर्वक नहीं करते हैं, सारा प्रॉब्लम कर जड़ी हुई है। तो इसमें आप प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमको कृष्ण के साथ संबंध स्थापित करना चाहिए। तो इस तरह से बोलते हैं कि तीन प्रकार की चीजें हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो संबंध के जो आचार्य हैं वो हैं श्रील सनातन गोस्वामी और उनके डीटीज हैं राधा मदन मोहन। तो जब अभी हम उस स्तर पर हैं जहां पर हमारी भक्ति की शुरुआत नहीं हुई, तो सबसे पहले हमको कृष्ण के साथ कुछ संबंध स्थापित करना चाहिए। जैसे कई घरों पे जाते हैं हाउस प्रोग्राम के लिए, तो वहां पर खुशी से पूछो अल्टर में कौन है, लड्डू गोपाल, कौन है कृष्णा, कौन है लड्डू गोपाल, कौन है कृष्णा, तो ऐसे संबंध नहीं है उनका। संबंध तब स्थापित होता है जब हम उनको कुछ नाम रखते हैं, जैसे कि आपके घर में बच्चा हो उसका नाम रखे, क्या है बेटा आपका नाम, बेटा, आपका क्या नाम है, बेटा, पड़ोसी का उसका भी बेटा, सारे बेटे होंगे तो कैसे संबंध है। आपके घर में जब पुत्र पुत्री उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं, तो आप क्या बोलते हैं उनको, इसका नाम है ये, इसका नाम है ये, उसका नाम रखते हैं। तो ऐसे ही हमारे घर में जो विग्रह है उनका भी नाम होना चाहिए। जैसे इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद ने हर एक विग्रह का एक एक नाम दिया, फरीदाबाद में राधा गोविंद, दिल्ली मंदिर में राधा पार्श्वती, राधा राधिका रमन, नोएडा में राधा गोविंद, वृंदावन में राधा श्याम सुंदर। तो ऐसे हमें भी अपने घर में संबंध स्थापित करने के लिए भगवान के विग्रहों का कुछ नाम होना चाहिए। इसलिए सनातन गोस्वामी जो थे उनके अपने विग्रहों का नाम था राधा मदन मोहन, और उन्होंने अनेकों शास्त्रों की रचना करी चेतन महाप्रभु के कहे अनुसार, और वो सिखाते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति को संबंध स्थापित करना चाहिए भगवान के साथ में। और संबंध कैसे स्थापित होता है, तो चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, चैतन्य रे दास मोहि, चैतन्य रे दास मोहि, तांदेर दासेर दास, मैं दासों का दास हूँ। हाँ, जैसे भागवतम में भी आता है, गोपीर भरते और पद कमले और दास दास दासानुदास। तो अपनी ये दासत्व स्थिति है, इसको समझना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए कि चाहे हमें दीक्षा में कोई नाम मिला हो या फिर ना मिला हो, तो फिर हमको दास भावना को, नाम में दास हो या ना हो लेकिन भावनाओं में दास होना चाहिए। लेकिन हम भावनाओं को दास छोड़ देते हैं, इसीलिए कारण हम हमेशा परेशान रहते हैं। किसी ने आपको कुछ बोल दिया तो व्यक्ति इसलिए परेशान होता है क्योंकि समझता है मैं तो मास्टर हूँ, मैं तो बॉस हूँ, मेरी इमेज है, मेरी इमेज को इसने मट्टी पलीत कर दी, इमेज की, मेरे को ऐसे बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दिया, मेरा भी कुछ स्टैंड है सोसाइटी के अंदर। तो व्यक्ति अगर ऐसा सोच रहा है तो वो कंफ्यूज है अभी भी, उसे दासत्व होगा ना तो उसे फर्क ही नहीं पड़ेगा, अरे ठीक है बोल लिया, घर में काम वाली आती है उसको 50 बातें बोलते हैं ना, फिर भी दूसरे दिन आ जाती है, वो ये नहीं सोचती है, उसे पता है कि मैं तो काम वाली हूँ, मुझे तो काम करने आना है, वो परेशान नहीं होती है कभी भी। लेकिन हम परेशान होते हैं क्योंकि हम बोलते तो हैं दास लेकिन है क्या, बॉस, प्रॉब्लम वहां पर होती है हमारी एक्चुअली। फिर संबंध के बाद में बताते हैं अभिधेय, किस तरह से अपने भजन साधन को करना चाहिए, ये सिखाते हैं रूप गोस्वामी अपने भक्ति रसामृत सिंधु में, जिनके भगवान है राधा गोविंद देव जो कि अभी जयपुर में विराजमान है। तो भगवान राधा गोविंद देव से जाकर कभी कोई जाए तो उन्हें प्रार्थना करनी चाहिए, किस प्रकार से मैं अपने भजन को भगवान की सेवा में लगा सकूं, किस तरह से अपनी भक्ति में कार्यों को भगवान की सेवा में लगा सकूं, ये चीजें कौन सिखा रहे हैं, रूप गोस्वामी। और वो हरिनाम चिंतामणि में भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, दस अपराध ये ना हृदय न पासे, कृपा करे महाप्रभु माझे नाम रसे। और वो महाप्रभु से मांग रहे हैं कि हे महाप्रभु ऐसी कृपा करें कि मैं 10 अपराधों से दूर रहकर भजन कर सकूं। तो 10 अपराधों से दूर रहने रहकर हमको भजन करना चाहिए। तो 10 अपराध खाली पढ़ने के लिए नहीं होते हैं। 10 अपराध का मतलब ये भी नहीं है कि जब 10 अपराध पढ़े तो 2 घंटे तक कोई अपराध ना करें। प्रभुपाद जी कह रहे हैं डिवोटी मीन्स अ 24 आवर डिवोटी। वो व्यक्ति तब भी अपराध ना करे जब वो अपने कार्य क्षेत्र में है या फिर प्रचार कार्य में है, जहां पर भी वो है वो कोई भी अपराध ना करे, किसी भी प्रकार का अपराध। जैसे अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश देना, ये गलत है। तो लोग ये समझते हैं इसका मतलब हरि नाम ही नहीं बताना किसी को। बोले प्रभु जी हमने अपराध सुबह पढ़ा था, लिखा है अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश नहीं देना। तो इस तरह से हम हरि नाम ही नहीं बताते किसी को कि आप जप किया करो। इसीलिए अनेकों संस्थाओं में मंत्र नहीं बताए जाते, लेकिन हमारी संस्था में मंत्र खुले में बताया जाता है, हरि नाम निकाला जाता है। सब लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब चिल्ला चिल्ला के भगवान के नामों को बताते हैं। तो हिदोलिनस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज अपने प्रवचन में बताते हैं, वो कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश नहीं करना, लेकिन हरि नाम का उपदेश करना। तो इसका क्या अर्थ हुआ? तो महाराज अपने लेक्चर में बोलते हैं कि जिस प्रकार से आपकी तिजोरी के अंदर सोना रखा होता है, वो कोई व्यक्ति बताता नहीं कितने केजी सोना रखा है। आपसे पूछा जाए आपका आपकी पॉकेट में कितना पैसा है, वो आप नहीं बताएंगे, लेकिन आपका नाम क्या है वो आप बता देंगे। तो जो प्रेम पूर्वक लॉकर में 1 चाबी 2 चाबी 3 चाबी लगा के जो रखता है व्यक्ति, वो खुलेआम नहीं बोलता। कोई आपके घंटी बजाए तो आपसे पूछे आपका नाम क्या है, तभी थोड़ा घबराते हैं, लिख लो राहुल, तो लिखवा देगा अपने नाम। लेकिन कोई पूछे आपके घर में कितना लॉकर में कितना सोना रखा है, तो कोई बोल देगा ऐसे। जब तक संबंध स्थापित नहीं होगा तब तक वो व्यक्ति बोलेगा नहीं। तो इसी तरह से हरे कृष्ण महामंत्र तो है, सबको मालूम है, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा क्या है? नाम चिंता मणि चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्न नाम नामिन। ये नहीं बताना कि नाम चिंता मणि है। अरे नाम से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। वो फिर अश्रद्धालु व्यक्ति होगा ना, वो बोले लगेगा अच्छा नाम में ऐसा क्या रखा है, और फिर आप भी अपराध करेंगे, वो भी अपराध करेगा, दोनों क्रिटिसाइज करेंगे। आप समझाने की कोशिश करते रहेंगे और वो ना समझने की कोशिश करता रहेगा। इसलिए प्रचार कार्य में प्रभुपाद जी कहते थे एलएसडी पिलाओ सबको। एलएसडी मतलब ड्रग्स होती है, लेकिन प्रभुपाद जी की एलएसडी क्या है? लविंग सर्विस विद डिवोशन। लविंग सर्विस विद डिवोशन, लव करो लोगों से, सर्विस करो, भक्ति में कार्य करो, तो फिर क्या होगा? प्रेम पूर्वक लोग जुड़ पाएंगे आपसे, अन्यथा जुड़ नहीं पाएंगे आपसे लोग। आप खाली उनको फिलॉसफी से समझाना चाहेंगे तो भक्त बनने को तैयार नहीं होते, क्योंकि उनकी अपनी 40 साल पुरानी फिलॉसफी होती है, उनके दिमाग में घुसती नहीं है चीजें। लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा अगर आप प्रेम पूर्वक किसी को समझाएं, जैसे प्रभुपाद जी प्रवचन देते हैं, प्रवचन देने के बाद में जो हिप्पीज हैं उनकी प्लेटें खुद धोते हैं, ये नहीं बोलते कभी कि मैं लेक्चर भी दूं प्लेटें भी दूं, चल तू प्लेट को धोते, ऐसे नहीं बोलते। अरे लेक्चर भी देते हैं, प्लेट प्रसाद भी कुक करते हैं, प्लेट भी धोते हैं, और फिर बाद में कई दिनों बाद कुछ भक्त आकर प्रभुपाद जी से कहते हैं कि स्वामी जी हम कुछ सर्विस कर सकते हैं आपके लिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं हाँ, आई वॉज वेटिंग फॉर दिस डे, मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था, चलो प्लेटें धोने में लग जाओ। तो इस तरह से प्रेम पूर्वक जब हम करेंगे तो भक्त खुद बोलेगा क्या सेवा है मेरे लिए। तो इसी तरह से हमें करना चाहिए। इवन फंड रेजिंग के लिए भी जाते हैं तो उस समय भी कई बार देखा गया है व्यक्ति, या तो उसके मन में होता है ये तो एटीएम मशीन है मेरी मंदिर चलाने की, इसको मैं कुछ प्रसाद खिलाऊंगा और ये तुरंत मुझे कुछ लक्ष्मी दे देगा। लेकिन होना क्या चाहिए, जिस तरह से महाराज भी बोलते हैं कई बार कि प्रेम पूर्वक उसको मंदिर का दर्शन कराइए, उसको टीचिंग करिए, उसको भक्त बनाने की कोशिश करिए। जब उसके मन में आपके लिए श्रद्धा उत्पन्न हो गई कि हाँ ये व्यक्ति ट्रू डिवोटी है, ये कोई लालची आदमी नहीं है, ये कोई मुझे एटीएम मशीन नहीं समझ रहा, उसके बाद वो व्यक्ति फिर आपका, तो तन मन फिर क्या आता है? हाँ जी, तो पहले उसका तन उसको, फिर उसका मन हरे कृष्णा में लगाओ, भगवान में लगाओ, धन वो अपने आप देने लगेगा, ऑटोमेटिकली देगा, फिर आपको मांगना नहीं पड़ेगा उससे जाके। लेकिन हम प्रॉब्लम क्या होती है, हम कहते हैं पहले धन, पहले मन दो।
तो फिर वहां पर क्रिटिसिज्म होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, और इस तरह से देखा गया है। हम कई जगह जाते हैं तो कहते हैं आपका एक स्क्वाड वाला आया था, वो इतना कुछ बोल के गया ना प्रभु जी, हाथ जोड़ा लो, हम तो नहीं देना चाहते, मिलना नहीं चाहते किसी से। कहते नहीं, हम तो मांगने नहीं आए, हम तो प्रसाद देने आए, हरे कृष्ण बात करते हैं, फिर चले जाते हैं वहां से। और पूछते भी नहीं 6 महीने तक कि भैया आप कुछ देना चाहते हो, फिर जाते हैं, फिर प्रसाद देते हैं, फिर हरे कृष्णा। अरे कुछ सेवा नहीं, कोई सेवा नहीं चाहिए, आप हरे कृष्णा करिए, मंदिर आई, यही सेवा है। तो इस तरह से अगर हम प्रचार करते हैं, उसमें कोई अभिलाषा नहीं रखते, कोई अपराध नहीं करते, तो फिर हमारी भक्ति अच्छी चल सकती है। फिर उसके बाद आता है विद्या के बाद प्रयोजन। प्रयोजन के आचार्य हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, और उनके डिटीज हैं राधा गोपीनाथ। वो बताते हैं किस प्रकार से अपने जीवन का टारगेट कृष्ण प्रेम, जो हम रोज सुबह मंगला आरती में पढ़ते हैं, मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या है। हाँ जी, मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है श्री कृष्ण चरणों में प्रीति शीघ्र किसी को प्राप्त हो, तो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य कृष्ण प्रेम रोज हम पढ़ते हैं, तो वो वहाँ प्रयोजन है। इस कारण से, इस प्रयोजन से बोलते हैं ना, क्या प्रयोजन है आपके यहाँ आने का, आप यहाँ है क्या, टारगेट लेके आए आप, तो ये टारगेट है एक्चुअली इस्कॉन ज्वाइन करने का, और कोई टारगेट नहीं है कि मैं बहुत बड़े मंदिर का निर्माण करने में आऊंगा तो मेरा बोर्ड लगेगा बाहर, या मैं इतना सारा कार्य कर दूंगा, प्रसाद कुकिंग कर दूंगा, लोग कहेंगे वाह क्या बनाते हैं, मजा आ जाता है। अगर इस अभिलाषा से हम कोई सेवा कर रहे हैं तो वहां पर हम सही सेवा नहीं कर रहे हैं। सही सेवा करने का तरीका यह है, कृष्ण प्रसन्नता के लिए मैं सब कुछ हूं, मैं दास हूं, प्रयोजन है मेरी हर सेवा का कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, चाहे कोई भी सेवा करो, प्रसाद कुकिंग हो, कोई भी सेवा मेरे से करनी। तो अगर कोई व्यक्ति इस तरह से करेगा तो वह असली भक्त बन सकता है, फिर वो भगवान को जान सकता है। जैसे कहते हैं चेतन चरितार्थ में, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरा देह प्रेम धन। प्रेम धन बिना, अगर प्रेम नहीं अर्जित किया जीवन में भजन के अंदर भगवान के लिए, तो व्यर्थ दरिद्र जीवन, वो एकदम भिखारी की जैसा जीवन है। चाहे कितना भी सम्मानित व्यक्ति हो, लेकिन अगर उसका कृष्ण प्रेम नहीं है तो फिर उसने दरिद्र जीवन है उसका, भिखारी है वो। इसीलिए हमारे मंदिर में जैसे बोलते हैं ना कई बार, ये लखपति है, बोले लखपति है, अच्छा दिखते तो नहीं, देखने में तो दरिद्र जैसे दिखते हैं। अरे लखपति का मतलब इन्होंने हरि नाम की लाख माला, मतलब लाख लाख भगवान का नाम लेते हैं, मतलब 64 माला का जप करते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति लखपति बन जाएगा। जैसे हरिदास ठाकुर, श्री हरिदास ठाकुर नाम आचार्य है, 192 माला का जप करते हैं, तो उनसे बड़ा और कौन लखपति हो सकता है। तो वो है जिसने प्रेम धन अर्जित नहीं किया, प्रेम धना बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन, दास का वेतन क्या है, अब दास ने सेवा करी है कृष्ण की तो कुछ वेतन चाहता है ना, कुछ रिजल्ट चाहता है, क्या कह रहे हैं, दास करी वेतन मोरा देह प्रेम धन, हे कृष्णा और कुछ मत दो, बस आप क्या करो अपने चरणों में मुझे प्रेम प्रीति प्रदान कर दो, बस यही मेरे जीवन का आखिरी टारगेट है, प्रयोजन यही है, हर सेवा का यही फल चाहता हूँ, और कोई फल नहीं, मेरे को इच्छा है। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए। आगे भगवत गीता में, इसमें श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, भगवत गीता में कहा गया, ये यथा माम प्रबद्धन्ते ताम सदैव भजाम्यहम्। यद्यपि भगवान हर जीव पर समान रूप से कृपालु हैं, किंतु जीव अपनी ओर से भगवान को कम या ज्यादा पसंद कर सकते हैं। देवता सकाम भक्त कहलाते हैं, अर्थात वे भक्त जिनमें मनो में भौतिक इच्छाएं होती हैं, किंतु शुद्ध भक्त निष्काम भक्त कहलाते हैं बिना किसी कामना के, क्योंकि उनकी अपनी निजी स्वार्थ के लिए इच्छाएं नहीं होती। सकाम भक्त स्वतः हितार्थ होता है, क्योंकि वह अन्यों के विषय में नहीं सोचता, अतः वह भगवान को पूरी तरह से तुष्ट कर नहीं कर पाता। जबकि शुद्ध भक्तगण अभक्तों को भक्त में बदलने के धर्म प्रचार का उत्तरदायित्व निभाते हैं, अतः वे भगवान को देवताओं की अपेक्षा अधिक तुष्ट कर पाते हैं। भगवान अभक्तों की ओर ध्यान भी नहीं देते, यदि भी वे हरि के हृदय के भीतर शुभेच्छु तथा परमात्मा के रूप में आसीन रहते हैं, किंतु वे उन्हें भी अपने ऐसे शुद्ध भक्तों के माध्यम से अपनी कृपा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करते हैं, जो धर्म प्रचार कार्यों में लगे हुए हैं। कभी कभी भगवान स्वयं ही धर्म प्रचार के कार्यों के लिए अवतरित होते हैं, जैसा कि चैतन्य महाप्रभु के रूप में किया था, किंतु अधिकांशतः अपने प्रमाणिक प्रतिनिधि को भेजते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद जी को भेजा, और इस तरह वे अभक्तों के प्रति अपनी अहित की कृपा प्रदर्शित करते हैं। तो अभक्तों को भक्त बनाने के लिए या तो भगवान स्वयं आते हैं महाप्रभु के रूप में, या फिर ज्ञान भगवत गीता का देने के लिए, या फिर अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं। तो दो प्रकार के भक्त होते हैं, एक होते हैं साधना सिद्ध और एक होते हैं नित्य सिद्ध। और साधना सिद्ध जो जप करके बहुत ध्यान पूर्वक और प्रचार करके और फिर शुद्ध होकर साधना
से सिद्ध हो जाते हैं, और एक होते हैं नित्य सिद्ध जो आते ही हैं भगवत धाम से। भगवान कहते हैं चलो ठीक है, ये बेचारे जो ग्रुप है ना पूरा फरदाबाद का, इनको भक्त बनाना है, इस एरिया का ये ना इसके पृथ्वी के लोग के इसको भक्त बनाना है, तो फिर भगवान अपने एक प्रतिनिधि को भेज देते हैं। तो फिर हमें उन प्रतिनिधि के शरणागत होना चाहिए, समझते हुए कि जो ये प्रतिनिधि है, जो अथॉरिटीज है, ये भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है, जो ये कह रहे हैं ये बिल्कुल भगवान की वाणी बोल रहे हैं। जैसे प्रभुपाद जी कहते थे, आई मे बी रॉन्ग बट वॉट आई एम सेइंग इज नॉट रॉन्ग, हो सकता है मैं अपूर्ण इंद्रियों का बना हूं, मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो गलत नहीं, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं, भगवत गीता एज इट इज, जो कहा वही आपको बता रहा हूं। और भगवान अपने शुद्ध भक्तों से इतने तुष्ट रहते हैं कि वो उन्हें धर्म प्रचार की सफलता का श्रेय देना चाहते हैं। अभी चैतन्य महाप्रभु चाहते तो खुद ही कर सकते थे, पृथ्वी ते आचे नगर अधिग्राम सर्वत्र प्रचार होइ मेरो नाम, वो चाहते तो खुद ही प्रचार कर सकते थे, चैतन्य महाप्रभु चले जाते सारे एरिया में प्रचार कर सकते थे, लेकिन वो क्या करना चाहते हैं, अपने शुद्ध भक्तों से इतने तुष्ट रहते हैं कि धर्म प्रचार की सफलता का श्रेय उनको देना चाहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी का वेट किया और कहा कि उनको श्रेय दूंगा, तो उनको श्रेय मिला। यद्यपि वे इस कार्य को स्वयं कर सकते थे, सकाम भक्तों की तुलना में अपने शुद्ध भक्त निष्काम भक्तों के साथ उनकी तुष्टि का यही संकेत है। भगवान ऐसे दिव्य कार्यों के साथ ही पक्षपात के आरोप से मुक्त रहते हैं और अपने भक्तों के साथ अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हैं। अब यह प्रश्न उठता है, यदि भगवान भक्तों के हृदय में भी आसीन रहते हैं तो फिर वे भक्त बनने के लिए प्रेरित क्यों नहीं हो पाते, भगवान तो सबके हृदय में है तो फिर वो भक्त बनने के लिए प्रेरित क्यों नहीं होते। तो इसका उत्तर भी श्रील प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में दिया, कहते हैं अभक्त उस बंजर या उस ऊसर खेत की तरह है जहां कोई भी कृषि कार्य सफल नहीं होता, बंजर जमीन है वहां पर कुछ भी सफल नहीं हो सकता। भगवान का भिन्नांश होने से पृथक जीव को स्वल्प स्वतंत्र प्राप्त होती है, तो व्यक्ति जीवित जो जीव है स्वतंत्रता है उसके पास, जो चाहे कर सकता है। भगवान का भिन्नांश होने के कारण स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके अभक्तगण भगवान तथा धर्म प्रचार के कार्य में लगे उनके शुद्ध भक्त दोनों के प्रति अपराध पे अपराध, अपराध पे अपराध, अपराध पे अपराध करते हैं। ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप वे उसर खेत की तरह बंजर बन जाते हैं जिनमें उत्पादन कर पाने की कोई शक्ति नहीं रह जाती। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर आपकी भक्ति जा रही है तो ये भक्त के लिए भी है अभक्त के लिए भी है। तो भक्त नहीं बनने का कारण है कि वो सुनने को तैयार नहीं है, जैसे अश्रद्धालु को जब प्रचार करते हैं वो क्रिटिसाइज करता है तो वो अपनी एक सीढ़ी और खत्म कर लेता है, पीछे आ जाता है, जो थोड़ा बहुत उसे सुकृति पुण्य मिलने वाले थे भक्ति में वो भी पीछे आ जाता है। इसलिए जो धर्म प्रचारक है उनकी बात को कम से कम सुन लेना चाहिए और उनको क्रिटिसाइज ना करें, वरना बोल रहे अपराध पे अपराध, अपराध पे अपराध करके परिणाम स्वरूप ऊसर खेत की तरह बंजर बन जाता है, बंजर जमीन बन जाएगी और उस पर कभी फसल नहीं उगेगी, भक्ति का बीज कभी नहीं उगेगा उसके ऊपर। और इवन जिसका उग भी गया है, हमारे जैसे किसी को मिल गया है भगवान का, भगवान ने चलो ठीक है दे देते हैं इसको, बेचारा घूम रहा है और उसको मिल गया है, अगर वो भी अपराध पे अपराध, अपराध पे अपराध करेगा, अथॉरिटी बोल रहा है कोई चीज और नहीं सुन रहा है, तो वो भी अपने बीज को समाप्त कर लेगा। बोलते ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लगता बीज, तो वो व्यक्ति भी अपना ये जीवन क्या करेगा, समाप्त कर लेगा, भक्ति को समाप्त कर लेगा। और फिर कई लोग दिखते हैं कि पहले तो बहुत अच्छी भक्ति करते थे, बड़ा अच्छा प्रचार करते थे, आजकल कहाँ है, दिखाई नहीं देते, क्यों, क्योंकि उन्होंने अपराध पे अपराध, अपराध पे अपराध करके बीज भी समाप्त कर लिया और जमीन को भी बंजर बना लिया। अब उस पर कोई सफलता होने की कोई चांस ही नहीं है, कितना भी प्रयास करो अब बीज नहीं आएगा उसके ऊपर। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए श्रील प्रभुपाद जी जैसे अशुद्ध भक्त हैं, इनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। 5-10 मिनट और बोलूंगा, श्रील प्रभुपाद जी के बारे में कुछ चर्चा करना चाहते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी जब छोटे थे तो वो रथ यात्रा निकाला करते थे, शुद्ध भक्त कैसे होते हैं नित्य सिद्ध, इसके बारे में भी हमें समझना चाहिए। जब वो 5 वर्ष के थे तो रथ यात्रा निकालते थे, तो उनके परिवार के लोगों ने पूछा, जैसे गली मोहल्ले में निकाल रहे थे तो पूछ रहे कि आप ये रथ यात्रा कहाँ ले जा रहे हो बेटा, अब है तो बोल रहे हैं ये जा रही है रथ यात्रा लंदन, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क। सारे लोग बोल रहे हैं, हैरान हो गए, ये 5 वर्ष का बच्चा कहाँ ले जा रहा है रथ यात्रा को, लंदन, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को। तो लंदन तो समझ में आता था क्योंकि उस समय ब्रिटिश लोग हिंदुस्तान में थे, 1896 में प्रभुपाद जी का जन्म हुआ और ये तकरीबन स्टार्टिंग जो ये 1900 जो शुरुआत हुआ उसमें 1900 के उसमें दशक में 20वीं शताब्दी में प्रभुपाद जी का जब 5 वर्ष के थे तब ये बात बोल रहा, उस समय ब्रिटिश राज्य था। तो उस टाइम लंदन तो समझ में आता था, हर व्यक्ति अपने बच्चे को विलायत भेजना चाहता था, जाएगा बैरिस्टर बनेगा बेटा और फिर क्या बन जाएगा, लंदन से पढ़कर आएगा, वकालत करेगा और फिर महात्मा गांधी के आंदोलन में भाग लेगा। तो इस तरह से सब लोग व्यक्ति यही सोचते थे। लेकिन प्रभुपाद जी ने लंदन के साथ साथ तीन शहरों का और नाम दिया। और देखिए नित्य सिद्ध की वाणी कैसी है कि प्रभुपाद जी ने जब पहली रथ यात्रा निकाली तो कहाँ निकाली? सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, लंदन और उन्हीं सारे शहरों में प्रभुपाद जी ने रथ को निकाला जगन्नाथ जी को। तो नित्य सिद्ध लोग पहले से ही जानते हैं कि क्या होने वाला है, इसलिए हमें अथॉरिटीज हो या आचार्य हो उनकी ध्यान पूर्वक उनकी वाणी को सुनना चाहिए। एक बार प्रभुपाद जी किस तरह से प्रचार कर रहे हैं ये देखना चाहिए। हाँ, जैसे हमने प्रचार के इसके ऊपर अच्छा अच्छा करी। और प्रभुपाद जी जब पहली बार गुरु स्वामी के रूप में स्थापित होते हैं और इस्कॉन को बनाते हैं तो प्रभुपाद जी की पहली व्यास पूजा कैसे होती है? व्यास पूजा हो रही है, व्यास पूजा होते गुरुदेव के गुणगान गाए जाते हैं, चरणाभिषेक किया जाता है, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है, भक्त नृत्य करते हैं, कीर्तन करते हैं। और वो लोग क्या करते हैं, प्रभुपाद जी को बोल रहे हैं आज प्रभुपाद जी का बर्थडे है, जन्माष्टमी के नेक्स्ट डे नंद उत्सव, तो लोग केक रखते हैं जैसे उनका बर्थडे सेलिब्रेशन होता था विदेश में, मोमबत्तियां लगाते हैं, कमरे को अंधेरा कर देते हैं और बोलते हैं प्रभुपाद जी को बुला के लाएंगे इस टाइम पे। तो प्रभुपाद जी को बुला के लाते हैं स्वामी जी को और फिर सारे बोलते हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए कहा कि थैंक यू सो मच। तो भक्त बोले नहीं नहीं प्रभुपाद अभी कुछ थैंक यू नहीं, अभी तो आपको इन मोमबत्तियों को फूंकना है फिर केक खा तो फूंकना है इनको जोर से। तो भक्त ने कहा अच्छा फिर क्या होगा? कह रहे आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी अगर सारी मोमबत्तियां बुझ जाए और एक जलती रह जाए तो ये आप जो विश मांगेंगे आज के दिन वो पूरी हो जाएगी। प्रभुपाद जी ने ये नहीं कहा अरे ये सब क्या है बंद करो इसे, भागवतम कहता है हाँ जी मेरे स्वरूप नित्य कृष्णदास बंद करो बकवास है ये सब, ऐसे नहीं कहा। उन्होंने कहा ओके, प्रभुपाद जी ने आंखें बंद किया, प्रभुपाद जी ने सारी मोमबत्तियां बंद की और एक जलती रह गई। तो है ना वो बोले प्रभुपाद नाउ यू कैन आस्क डिजायर फॉर एनी विश, एक कोई भी आप इच्छा अपनी मांग सकते हैं भगवान पूरी करेंगे। प्रभुपाद जी ने आंखें बंद करी और फिर इच्छा करी, फिर भक्त भी बड़े सीधे थे बोले प्रभुपाद क्या मांगा आपने? तो प्रभुपाद जी ने कहा अब प्रभुपाद जी ये भी बोल सकते थे मैंने जो मांगा मैं बताना नहीं चाहता, सीक्रेट माय सीक्रेट ये मेरे तक रहने दो। लेकिन प्रभुपाद जी इतने ट्रांसपेरेंट है, भक्त को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जो भी कर रहा है वो सब बताना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने बोला मैं इस समय ये सोच रहा था, मैंने ये इच्छा करी कि जो ये हरे कृष्णा मोमेंट है, मैं तो क्या हूँ वृद्ध शरीर में हूँ, हो सकता है कुछ समय बाद मुझे इस शरीर को त्यागना पड़े, लेकिन ये हरे कृष्णा मोमेंट जो है ये क्या हो निरंतर चलता रहे, दिन दूनी रात दूनी तरक्की करता रहे। और देखिए श्रील प्रभुपाद जी के डिजायर के कारण आज भी क्या हो रहा है हर गली मोहल्ले में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे कई बार जाते हैं ना तो प्रभुपाद जी के जो शास्त्र है उन्होंने रात रात बैठ के लिखे हैं, और आप देखिए कई बार जब भक्त ट्रांसलेशन करते थे उनकी बुक्स का तो ईयरफोन लगा रखा है ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं और आवाज आ रही है, और प्रभुपाद जी ने एक शब्द बोला शरणागति और उसके बाद में टुक 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 आवाज आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो भी डॉट 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 लगा देते हैं। प्रभुपाद जी जब प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं डॉट 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 क्यों लगा दिया? कह रहे प्रभुपाद जी आपने काफी लंबा गैप दिया था फिर हमें समझ नहीं आया क्या लिखे उसमें, तो आप फिल इन द ब्लैंक्स से आप लिख सकते हैं इसके अंदर। प्रभुपाद जी ने कहा नहीं 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 मैं उस समय सोच रहा होता हूँ जब मैं इस तरह से मैं गैप देता हूँ, फिर इतना गैप एक वर्ड फिर लॉन्ग गैप जा रहा रिकॉर्डर के अंदर फिर एक शब्द फिर लॉन्ग गैप। तो प्रभुपाद जी ने कहा एक एक शब्द महत्वपूर्ण है किसी का जीवन बदलने के लिए, तो मैं इसलिए सोच सोच कर स्थापित करता हूँ एक एक शब्द को, क्या पता व्यक्ति के पास कलयुग में टाइम ही ना हो वो बस ऐसे बुक खरीदे, अच्छा आपके इस्कॉन की बुक है अच्छा क्या लिखा है कृष्ण परम भगवान है बस इतना उसे समझ में आ गया तो बस उसका तो जीवन ही बदल जाएगा। तो इसलिए हर एक शब्द को सोच सोच कर, इसीलिए प्रभुपाद जी ने आप देखें भगवद गीता चाहे ध्यान योग हो चाहे ज्ञान योग हो चाहे भक्ति योग हो, ज्ञान योग में ध्यान योग में भी कृष्ण प्रभुपाद जी कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं कि कृष्ण फिलोसफी को छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, अब परपट लिख रहे हैं तो भी हर जगह ध्यान योग में किसका ध्यान करो
कृष्ण का ध्यान करो।
तो कई लोग तो क्रिटिसाइज करते हैं, अरे ध्यान योग में भी कृष्ण, ज्ञान योग में भी कृष्ण, भक्ति योग में भी कृष्ण, डिफरेंस क्या है तुम्हारी भगवदगीता में? हर बात पर तो सेम है, पहला श्लोक पढ़ो तब भी भक्त बनाते हो, आखिरी पढ़ो तब भी भक्त बनाते हो, बीच में पढ़ो तब भी हरे कृष्ण ये क्या है? तो वो समझ नहीं पा रहे कि कृष्णा कृष्णाइज्ड, व्यक्ति इतना कृष्ण में विभोर है कि हर तात्पर्य में कृष्ण को रिलेटेड रखकर। रूपा जी जान रहे हैं अष्टांग योग या ज्ञान योग ये सब फालतू फिलोसफी है, मैं इस समय पढ़ूंगा नहीं, तो थोड़ा बहुत दिया तुरंत कृष्ण आ जाते हैं लिखने में, वो रुक ही नहीं पा रहे कृष्ण को। जैसे व्यक्ति किसी से प्रेम करता है ना, तो कुछ भी बात हो घुमा फिरा के उसी पे है, अरे वो बड़ा प्रेम करता है मेरे से, आप भक्त को अच्छे हो, लेकिन वो जितना करता है उतना कम नहीं करता। वैसे कृष्ण से इतने प्रभावित है प्रभुपाद की छोड़ ही नहीं पा रहे कृष्ण को। एक बार ऐसी भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था, तो किसी भक्त ने पूछा, अरे जी आपकी भगवत गीता 100 रुपए की ना, बड़ी महंगी भगवत गीता है, अभी आप देखो इतने सारे संस्थाएं देती है 20-20 रुपए में भगवत गीता मिलती है जी, 20-20 रुपए में। तो भक्त बोला हाँ सच बात है, हमारी भी 20 रुपए की है। अच्छा फिर आप 100 क्या मांग रहे हो? कह रहे देखिए जो श्लोक है और इसका अनुवाद है ये 20 रुपए का है, लेकिन हमारा तात्पर्य 80 रुपए का है, तो 20 और 80 कितने हो? अरे 100 ठीक है मैं ले लूँ। तो इस तरह से आप बोलते हमें प्रचार करते हैं भक्त कि हमारा जो तात्पर्य है ये 80 रुपए का है। प्रभुपाद जी ने 80 रुपीज मतलब सोचे कितना ज्यादा उसको बिगेस्ट अमाउंट दिया, श्लोका से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तात्पर्य। तो कुछ भक्त मिलते हैं वो पूछते हैं कि गीता पढ़ी है? हाँ जी पढ़ी है। कितने दिन में पढ़ी है? अरे 5 दिन में पढ़ लिया हमने। तो कैसे पढ़ी? बस श्लोक अनुवाद श्लोक अनुवाद श्लोक अनुवाद। समझ में आया? कुछ समझ नहीं आएगा भी नहीं कभी भी जीवन में। कह रहे तात्पर्य तो इतने लंबे लंबे पढ़ेंगे तो साल गुजर जाएगा। तो वो टाइम वो सोचते हैं इमेज के लिए, मैंने भी भगवत गीता पढ़ी है। वो ये नहीं समझते भगवत गीता पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, भगवत गीता का तात्पर्य पढ़ना और उसको जीवन में अपनाना इंपॉर्टेंट है। कोई ये समझ गया ना कि एक ही तात्पर्य प्रभुपाद जी का रोज पढ़ूंगा मैं, बस फिर उसकी भक्ति में जो दृढ़ता आएगी वो फिर और कोई इससे कॉम्पिटिशन में नहीं आएगा। क्या है तो इतना एकदम आनंद में रहता है हमेशा, क्योंकि वो तात्पर्य पढ़ रहा है वो श्रील प्रभुपाद जी के। तो इम्पोर्टेंट है प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ना। गीता तो हर एक संस्था में अवेलेबल है, श्लोका मिल जाएंगे सेम, लेकिन प्रभुपाद जी के तात्पर्य हर जगह नहीं मिलेंगे। वो कहाँ मिलते हैं? सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के अंदर। तो प्रभुपाद जी जिस तरह से महाप्रभु ट्रेनिंग देने के लिए आए, वो स्वयं कृष्ण है लेकिन फिर भी हर समय क्या कहते हैं? कृष्णा 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 है। और तो महाप्रभु हमेशा कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं, खुद भी कृष्ण है। तो वो सिखा रहे हैं कि किस तरह से कृष्ण के लिए प्रिय और हमें कृष्ण को सोचना चाहिए। ऐसे ही प्रभुपाद भी हमेशा ट्रेनिंग देते थे, जैसे अब बुक्स छपकर आती थी तो लोग बोलते थे प्रभुपाद जी बुक प्रिंटिंग ऊपर आया है, तो उसके नीचे ऑथर का नाम लिखा है क्या? भक्ति वेदांत स्वामी। प्रभुपाद जी ने प्रूफ रीडिंग किया, उसको क्रॉस कर दिया, गो एंड राइट हिज डिवाइन ग्रेस अभय शरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी, नीचे लिखो फाउंडर आचार्य ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। अभी आप कोई भी बुक पढ़ेंगे उसमें आपको यही टाइटल मिलेगा। अभी कोई सोच सकता है कि प्रभुपाद जी कितने एरोगेंट हैं, कितने घमंडी हैं, अपनी स्थिति को हटाना नहीं चाह रहे हैं, विनम्र होना चाहिए उनको, ये किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, दीक्षा दे रहे हैं तो कह रहे हैं पे ओबेसेंसेस टू मी, मेरे को दंडवत प्रणाम करो। तो एक्चुअली वो ट्रेनिंग देने के लिए ना, अगर वो ट्रेनिंग नहीं देते तो किस प्रकार से हम सीख पाते कि गुरु का सम्मान किस प्रकार करना चाहिए, गुरु की क्या योग्यता है। और प्रभुपाद ने इवन ये भी बोला, many acharyas will come in my disciplic succession but I will remain the founder acharya, बहुत सारे आचार्य आएंगे अपनी कमेंट्रीज करेंगे लेकिन फाउंडर आचार्य तो मैं ही रहने वाला हूँ, आई विल रिमेन द फाउंडर आचार्य। जो इस्कॉन की स्थापना करने वाले आचार्य हैं वो कौन रहने वाले हैं? श्रील प्रभुपाद। तो ऐसे ही आज देखा जाता है जैसे भक्त प्रभुपाद जी के प्रवचन को छोड़कर या प्रभुपाद जी की बुक्स को छोड़कर और बुक्स पढ़ते हैं। तो बुक्स पढ़ना चाहिए किस लिए? और आज प्रचार कर सकते हैं और चीजों को ध्यानपूर्वक समझने के लिए। श्रील प्रभुपाद जी ने खुद भी बोला कि आई एम राइटिंग माई पर्पज, मैं पर्पज लिख रहा हूँ एंड माई डिसाइपल्स विल राइट कमेंट्रीज ऑन माई पर्पज, वो टिप्पणियां लिखेंगे मेरे हर एक तात्पर्य के ऊपर। अलाउ किया उन्होंने कि लिखना चाहिए, इसीलिए इतने सारे अभी जो आचार्य हैं या सन्यासी हैं या डिवोटीज हैं सीनियर, वो सब क्या करते हैं? कमेंट्रीज लिखते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग प्रभुपाद के पास्ट टाइम्स, किस लिए लिखते हैं? ताकि उस तात्पर्य को और अच्छे से हम समझ सकें। लेकिन हम तात्पर्यों को इग्नोर करके कमेंट्रीज पढ़ेंगे तो फिर हम भक्त नहीं बन पाएंगे। इसलिए सबसे बेसिक, इसलिए इस्कॉन में इतनी सारी बुक्स हैं लेकिन सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन किसका होता है? भगवद गीता का, क्योंकि ये प्रथम तात्पर्य प्रभुपाद जी ने दिया है। इस तात्पर्य को पढ़ने से हम दृढ़ पूर्वक भक्ति कर सकते हैं।
समय हो गया, ज्यादा बोलना चाहता लेकिन समय नहीं है, तो अभी ये समाप्त करेंगे।
श्री श्री राधा गोविंद भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, पद तपावन श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। रिताय रिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। बहुत 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 सुंदर कथा करने के लिए हम लोग बहुत उत्साह करते हैं, और द्वारका के द्वारका वासियों के लिए बहुत उत्साह कर रहे हैं, तो बहुत हम लोग बहुत उत्साह बहुत बात करेंगे।
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
और अब सबके लिए सुंदर व्यवस्था है गीतों में, और आज के प्रशासन में वो अच्छा है, माता जी ने स्पॉन्सर किया है, और माता जी